यूनिट सेकंड पाठ 6 शिक्षा प्रशासन की मूल कार्य बेसिक फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नियोजन व्यवस्था निर्देशन एवं नियंत्रण। आधुनिक युग में शिक्षा का उत्तरोत्तर विकास होने के कारण शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। शैक्षिक प्रशासन में लगे हुए सभी व्यक्ति शिक्षा संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करके शिक्षा जगत की सेवा करने की भावना रखते हैं। शिक्षा प्रशासन माध्यम से ही विद्यालयों तथा सभी शैक्षिक संस्थानों के कार्यों को संपन्न किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों की संख्या अधिक है, सभी कार्यों का वर्णन एवं विवेचन करना संभव नहीं है। अतएव नीचे की पंक्तियों में कुछ प्रमुख कार्यों को अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया है, जो इस प्रकार हैं। अ सियर्स के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सियर्स। ब लूथर गुलिक के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू लूथर गुलिक। स हेनरी फेल के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू हेनरी फेल। द रसेल टी ग्रेग के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू रसेल टी ग्रेग। या मोहिल्लम के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कर्तव्य ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। उपरोक्त सभी विद्वानों द्वारा बताए गए कार्यों एवं कर्तव्यों को शिक्षा प्रशासन में प्रयुक्त किया गया है, जिसकी गणना शिक्षा प्रशासन के मूल कार्यों से की जाती है। शिक्षा प्रशासन के मूल कार्य इस प्रकार हैं। अ सियर्स के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू सियर्स। जेवी सियर्स ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में शिक्षा प्रशासन के 5 प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया है। पहला योजना बनाना, दूसरा व्यवस्था करना, तीसरा निर्देशन या संचालन करना, चौथा समायोजन या समन्वय करना, पांचवा नियंत्रण या मूल्यांकन करना। उपयुक्त कार्यों पर संक्षेप में इस प्रकार विचार किया जा सकता है। पहला नियोजन बनाना। सियर्स के अनुसार प्रशासन का प्रथम कार्य योजना बनाना है। किसी कार्य की सफलता योजना पर ही आधारित होती है। योजना बनाते समय उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होता है। कार्य में संबंधित उनकी सूचनाओं को संकलित किया जाता है। आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कार्य करते समय कौन कौन सी बाधाएं मार्ग में आ सकती हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। सारांश यह है कि कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उन सभी बातों पर विश्लेषणात्मक ढंग से विचार किया जाता है, जिनको करने से कार्य में सफलता प्राप्त होती है। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए भी योजना का निर्माण करना आवश्यक है, तभी कोई विद्यालय अथवा कोई भी शिक्षण संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। दूसरा व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजेशन। शिक्षा प्रशासन का दूसरा कार्य व्यवस्था करना है। व्यवस्था का तात्पर्य उन आवश्यक साधनों को जुटाने से है, जो निर्धारित योजना को कार्यान्वित कराने में सहायक होते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत कुछ नियम बनाए जाते हैं तथा कार्य करने का ढंग भी निश्चित किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन में 2 बातों को करने की परम आवश्यकता होती है। एक तो शिक्षण कार्य की सुगमता के लिए विभिन्न उपकरणों को जुटाना, यथा कक्षा भवन, श्यामपट, सहायक सामग्री आदि। दूसरे शैक्षिक कार्य को करने वाले व्यक्तियों की, जैसे शिक्षक, लिपिक तथा अन्य कर्मचारी। वस्तुतः शैक्षिक प्रशासन में उपयुक्त दोनों तत्वों को जुटाना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता, अपितु यह भी देखा जाता है कि इनका उपयोग भी कितनी कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। यदि वस्तुओं तथा व्यक्तियों का दुरुपयोग या अपव्यय होता है तो वह कुशल प्रशासन का परिचय नहीं समझ पाता। उदाहरण, सहायक सामग्री का कक्षा शिक्षण में वर्षों तक उपयोग न होना, भूगोल में मानचित्रों को कभी न दिखाना, विज्ञान की उपयोगी वस्तुओं पर एक स्थान पर पड़े रहने से धूल जम जाना आदि शैक्षिक प्रशासन की दुर्बलता है। इसी प्रकार वांछित विषयों के स्थान पर अयोग्य तथा अप्रासंगिक अध्यापकों की नियुक्ति करना समय नष्ट ही करना है। वाणिज्य विषय पढ़ाने के लिए अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण स्नातकोत्तर व्यक्ति की नियुक्ति अनुचित है। इसी प्रकार विद्यालय के कार्यालयों में भी यदि कुशल एवं दक्ष लिपिकों की नियुक्ति नहीं होती है तो विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। वास्तव में व्यक्तियों की योग्यता एवं क्षमता ही शैक्षिक प्रशासन को सफल बना सकती है। व्यवस्था का भी मूल उद्देश्य यही होना चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र में सभी वांछित संसाधन एवं व्यक्ति पारस्परिक सहयोग से इस प्रकार कार्य करें कि प्रशासन में पूर्ण रूप से सफलता मिले। तीसरा निर्देशित करना, डायरेक्शन। शिक्षा प्रशासन का तीसरा कार्य संचालन यानी कि डायरेक्शन है। संचालन वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा योजना तथा व्यवस्था कार्यान्वित होता है। योजना के पश्चात तथा व्यवस्था के अंतर्गत साधनों को जुटाने के पश्चात विभिन्न कार्यों को करने के लिए उचित निर्देशन देना, सलाह देना तथा उपलब्ध साधनों को कार्यान्वित करना आदि संचालन के ही कार्य होते हैं। कहा जा सकता है कि संचालन में गत्यात्मकता होती है। संचालन तो कार्यों के माध्यम से दिखाई देता है। कोई भी प्रशासक जिसे अधिकार प्राप्त होते हैं वह अपने निर्देशनों, आदेशों तथा संकेतों से कार्य को करता है। कार्य को करना वास्तव में संचालन की ही प्रक्रिया होती है, परंतु इस संचालन प्रक्रिया में प्रशासक को निपुण होना चाहिए। प्रशासक की प्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि वह मानव प्रकृति को ठीक परखने की क्षमता उत्पन्न रखता हो। किसी भी कार्यशाला में अथवा किसी भी स्थान पर विभिन्न प्रवृत्तियों के व्यक्ति होते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिक गंभीर एवं कर्मठ होता है तो कोई आवेश में शीघ्र आने वाला तथा कार्य को ठीक ढंग से न करने वाला होता है। कुछ व्यक्ति किसी की बुराई भलाई में न पड़कर केवल अपने तक ही सीमित रहते हैं। कुशल प्रशासक को इन सभी के बीच में रहकर कार्य करना होता है। विभिन्न प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों को ठीक प्रकार समझकर कार्यों का उचित विभाजन करना कुशल प्रशासक का कार्य है। क्रीड़ा के मैदान में कुशल खिलाड़ी शरीर में हिष्ट पुष्ट परंतु शैक्षिक कार्यों में कम रुचि रखने वाले अध्यापक को ऐसा ही कार्य दिया जाना चाहिए जिससे वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सके। गणित तथा विज्ञान पढ़ाने में दक्ष परंतु साहित्य क्या शाब्दिक निपुणता न रखने वाला अध्यापक मंच पर भाषण देने में संकोचशील होता है। अतएव कुशल प्रशासक को कर्तव्य है कि वह क्षमताओं की परख करने तथा कार्यों का श्रेष्ठ विभाजन करने में निपुण होना चाहिए। विद्यालय के समस्त अधिकारों तथा कर्तव्यों का सभी व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विकेंद्रीकरण किया जाए जिससे सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्वयं को कर्तव्य परायण तथा उत्तरदायित्व समझते रहें। संचालन की प्रक्रिया में इन सभी बातों पर ध्यान देना परम आवश्यक है। चौथा, समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन। शैक्षिक प्रशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य समायोजन यानी कि कोऑर्डिनेशन है। समायोजन का तात्पर्य है कि किसी कार्य की सफलता के लिए सभी संबंधित व्यक्ति पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव से कार्य करें। कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने की सफलता हेतु सहयोग भावना से कार्य करना समायोजन कहलाता है। एक सरल उदाहरण से समायोजन पर अधिक प्रकाश डाला जा सकता है। घर की दीवारों पर नए छप्पर को रखने के लिए कुछ व्यक्तियों की श्रम की आवश्यकता होती है। सभी व्यक्ति एकजुट होकर बल लगाते हैं तो वह छप्पर पलक मारते ही ऊपर उठ जाता है। इसके विपरीत यदि कुछ व्यक्ति तो छप्पर उठाने में अपनी शक्ति लगाएं, कुछ मौन ही खड़े रहें और कुछ छप्पर के बांसों को पकड़कर नीचे की ओर खींचने लगे तो उस छप्पर को उठाने में अत्यधिक संदेह होता है। वास्तव में शैक्षिक प्रशासन का छप्पर उठाने में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्रों, लिपिकों तथा अधिकारियों की मिली जुली शक्ति की नितांत आवश्यकता होती है। इन सभी व्यक्तियों की कम या अधिक शक्ति की गणना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आवश्यकता तो केवल इतनी है कि ये सभी व्यक्ति एक साथ सद्भावनापूर्ण वातावरण में रहकर तथा एक दूसरे के प्रति आदर भावना रखकर कार्य की सफलता हेतु प्रयास करें। समायोजन का महत्वपूर्ण कार्य सभी व्यक्तियों को सफलता प्रदान करना है। जिस प्रकार विवाहित अवसरों पर बैंड बाजा में सम्मिलित सभी बाजे एक दूसरे के साथ अपना स्वर मिलाते हैं तभी उसकी लय ताल श्रोताओं को कर्णप्रिय प्रतीत होती है। इसी प्रकार शिक्षा संस्था में भी सभी कर्मचारियों को एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए। प्रबंधक तथा प्राचार्य, प्राचार्य तथा शिक्षक, शिक्षक तथा विद्यार्थी, प्राचार्य तथा विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारी आदि सभी को एक दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा संस्थान की उन्नति में जो अन्य सामाजिक संस्थाएं सहयोगी हों उनके साथ भी मधुर संबंध रखने की आवश्यकता होती है। समायोजन के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने विचारों को दूसरे पर बलपूर्वक लादने का प्रयास न करें। दूसरों के उत्तम विचारों को भी हमें सुनना तथा आदर देना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन के लिए समायोजन अत्यंत आवश्यक है। पांचवा, मूल्यांकन या नियंत्रण करना, कंट्रोल और इवेलुएशन। यह प्रशासन का अंतिम अंग होता है। नियंत्रण का आधार पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन तथा मूल्यांकन इवेल्युएशन होता है। किसी भी संस्था में जितनी गतिविधियां चलती हैं उन्नति के लिए जितने कार्य किए जाते हैं तथा संगठन में जितने व्यक्ति रखे जाते हैं उनकी बुराई भलाई तथा उनकी कार्यक्षमता या मापन नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही संभव होती है। व्यक्तियों को उचित निर्देशन भी मूल्यांकन के पश्चात ही दिया जा सकता है तथा दुर्बलताओं का ज्ञान करने के पश्चात सुधार के लिए प्रयास किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, निर्देशन सामग्री, पाठ्योत्तर क्रियाएं आदि सभी का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा संस्था की उन्नति में जो क्रिया सहायक एवं उपयोगी होती है केवल उसे ही प्रोत्साहन दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के अनुचित तथा अवांछित व्यवहार को रोका जा सकता है। कौन व्यक्ति किसी सीमा तक अधिकारों का प्रयोग करेगा, वास्तव में इसका निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता है। इस संबंध में सियर्स का भी कथन है, कोई भी जब तक संबंधित व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियंत्रण न कर ले, तब तक वह किसी क्रिया के संबंध में निर्देशन नहीं दे सकता। सियर्स का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि किसी भी संस्था का संचालन करने में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, उसका समुचित ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही विदित होता है। जेबी सियर्स के अतिरिक्त भी शैक्षिक प्रशासन के कार्यों का यंत्र तंत्र उल्लेख किया गया है। शिकागो विश्वविद्यालय की नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक द 45th ईयरबुक में कार्यों की गणना इस प्रकार की गई है, पहला उत्तरदायित्वों को सौंपना, दूसरा स्थानीय नियंत्रण को शक्ति प्रदान करना, तीसरा व्यय किए हुए धन के बदले में अधिकतम लाभ प्राप्त करना, चौथा सामाजिक संस्थाओं, संगठनों तथा जनता सेवकों द्वारा की गई प्रशंसा को प्राप्त करना, पांचवा जनतंत्रात्मक प्रणाली से युक्त कार्यक्रमों को लागू करना, छठवां नीतियों का निर्धारण तथा उन्हें लागू करना, सातवां व्यक्तियों तथा भौतिक स्रोतों की क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाना और आठवां एक ही क्षेत्र की समस्याओं को एकीकृत करना। पर लूथर गुलिक के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू लूथर गुलिक। अमेरिका के जन प्रशासन विज्ञान के प्रसिद्ध लूथर गुलिक ने प्रशासन के सात कार्यों का उल्लेख किया है, जिन्हें शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में माना जा सकता है। ये सात कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, नियोजन। शिक्षा प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा संबंधी योजनाओं का निर्माण करना तथा इन योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार हो, इसके लिए विधियों के संबंध में भी निर्णय करना है। योजनाएं यदि पूर्ण निश्चित हों तो भविष्य में कार्य करना सुविधाजनक होता है। योजना का उद्देश्य कम समय में कम व्यय करके उत्तम कार्य करना है। शैक्षिक योजनाएं शैक्षिक उन्नति हेतु बननी चाहिए। योजनाएं वस्तुनिष्ठता तथा निष्पक्षता से युक्त होनी चाहिए। योजनाएं वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं से संबंधित होनी चाहिए। योजनाओं में उपलब्ध सभी साधनों तथा स्रोतों का योगदान होना चाहिए। संस्था या संगठन के सभी व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग का योजना निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए। कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रशासन यदि योजना निर्माण के कार्य को सावधानी पूर्वक करे तो संपूर्ण कार्यविधि में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, प्रबंधन करना, मैनेजिंग। शिक्षा प्रशासन का किसी विद्यालय अथवा संस्था के लिए माननीय तथा भौतिक साधनों को जुटाना ही व्यवस्था का कार्य करना है। उत्तम व्यवस्था से ही शिक्षा क्षेत्र का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। व्यवस्था को स्थिर एवं अपरिवर्तनशील नहीं बनाना चाहिए। व्यवस्था लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक समय आवश्यक सुधारों तथा नवीन विचारों को उसमें सम्मिलित किया जा सके। व्यवस्था यदि ऐसी हो जिसमें अधिकाधिक अध्यापक, छात्र एवं संरक्षक विद्यालय के कार्यों में भाग ले सके तो विद्यालय की अधिक उन्नति हो सकती है। व्यवस्था का उद्देश्य भी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। तीसरा, कार्यकर्ता, स्टाफिंग। एक संगठन या किसी संस्था में अनेक प्रकार के कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती है। अध्यापकों, क्लर्कों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने का कार्य शैक्षिक प्रशासन का ही होता है। कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा तथा उनकी पदोन्नति, प्रमोशंस आदि की सुव्यवस्था भी प्रशासन पर ही अवलंबित होती है। चौथा, निर्देशन, डायरेक्टिंग। शैक्षिक प्रशासन का निर्देशन देने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। संगठन के व्यक्तियों को कार्य करने की प्रणाली का ज्ञान उत्तम प्रशासक ही करते हैं, परंतु उनमें निर्देशन की क्षमता पूर्ण रूप से होनी चाहिए। निर्देशन वस्तुतः वातावरण, कर्मचारी, साज सज्जा, सामान, धन आदि कारकों पर आश्रित होती है। इसके साथ ही प्रशासक का कौशल भी अनिवार्य रूप में होना चाहिए। इन सभी कारकों का एक स्थान पर समायोजन करना कुशल प्रशासक पर ही अवलंबित होता है। प्रशासक धन, वातावरण तथा व्यक्तियों की प्रकृति का ठीक ज्ञान रखकर ही निर्देशन का कार्य ठीक ढंग से कर सकता है। पांचवा, समन्वयकरण, कोऑर्डिनेशन। अनेक वस्तुओं को अधिक लाभ के लिए एक स्थान पर रखना ही समन्वयन की क्रिया कहलाती है। शिक्षा तथा शिक्षालयों में अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, फिर भी ये सभी एक प्रशासक की दृष्टि में होते हैं। अनेकता में एकता लाने का प्रयास समन्वयकरण का होता है। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों में भी समन्वय का होना आवश्यक है। नियुक्ति, आर्थिक बजट, पाठ्यक्रम, पाठ्यमित्र क्रियाओं में भी समायोजन एक समन्वय होना चाहिए। कुशल प्रशासक यदि समन्वय का कार्य करने में सावधानी रखता है तो कार्य के बीच में संघर्ष एवं समस्याओं का उसे सामना नहीं करना पड़ता है। छठवां, आलेखन, रिपोर्टिंग। शिक्षा क्षेत्र में अनेक बातों के संबंध में प्रशासक को जानकारी रखनी होती है। शिक्षा अधिकारियों, सरकारी आदेशों तथा विभिन्न समुदायों के क्रियाकलापों को प्रशासन अपनी दृष्टि में रखता है। संगठन के अध्यक्षों तथा समाज के सदस्यों को किसी विषय का सही ज्ञान कराना प्रशासक का महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। प्रशासक यदि विज्ञप्तियों के संबंध में ज्ञान नहीं रखता है, समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं होता है और उच्च अधिकारियों को समस्याओं तथा परिस्थितियों से ठीक प्रकार परिचित कराने में सफल नहीं होता है तो ऐसे प्रशासक की योग्यता में संदेह होने लगता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रशासन को शोध करना, निरीक्षण एवं अभिलेख के तीनों कार्यों को करने में प्रशासनिक विज्ञप्ति लेखन का कार्य भी ठीक कर सकता है। सातवां, वित्तीय नियोजन बजटिंग। शिक्षा संबंधी सभी कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक धन का अनुमान तथा उसका लेखा जोखा करना बजट ही कहलाता है। अधिक व्यय न हो तथा व्यय पर नियंत्रण भी रहे इसकी पूर्ण योजना बनानी चाहिए। कुशल प्रशासक को बजट बनाने में तथा उसे संबंधित व्यक्तियों के सम्मुख प्रस्तुत करने के कार्य में दक्ष होना चाहिए। इस प्रकार लूथर गुलिक ने प्रशासक के सात कार्यों को आवश्यक बताया है। शैक्षिक प्रशासन ही उत्तमता में वृद्धि करना भी है। सर हेनरी फेल के अनुसार शिक्षा प्रशासन के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू हेनरी फेल। हेनरी फेल प्रशासन के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर प्रशासन के निम्नलिखित कार्य बताए हैं जो इस प्रकार है। पहला योजना, दूसरा व्यवस्था, तीसरा निर्देशन, चौथा समन्वय तथा पांचवा नियंत्रण। लूथर गुलिक तथा जे बी सियर्स द्वारा बतलाए गए कार्यों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। हेनरी फेल के कार्यों भी लगभग वही है जो सियर्स ने अपने कार्यों में फेल के कमांडिंग स्थान पर डायरेक्टिंग शब्द को अपनाया है। लूथर गुलिक ने फेल के कार्यों को ही विस्तार पूर्वक अपनाया है। गुलिक का प्रशासन के कार्यों में संबंधित फार्मूला POSDCORD के रूप में जाना जाता है, जिसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग तथा बजटिंग कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। लूथर के इस फार्मूले का आज भी महत्व है। द रसेल टी ग्रेग के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्य, रसेल टी ग्रेग ने भी प्रशासन के कुछ कार्य बताए हैं जिसकी गणना इस प्रकार है। पहला निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग, दूसरा योजना बनाना यानी कि प्लानिंग, तीसरा व्यवस्था करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, पांचवा संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, छठवां प्रभाव डालना यानी कि इन्फ्लुएंसिंग, छठवां समन्वय करना यानी कि कोऑर्डिनेटिंग और सातवां मूल्यांकन करना यानी कि इवैल्यूएशन। रसेल टी ग्रेग के कार्यों में संप्रेषण का कार्य भी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक सूचना, विचार, निर्देशन आदि पहुंचाना ही संप्रेषण का कार्य समझा जाता है। यह संप्रेषण के लिए किया जा सकता है तथा नीचे की ओर से ऊपर की ओर बराबर के व्यक्तियों में तथा ऊपर की ओर से नीचे की ओर किसी सूचना को अथवा किसी विचार को संप्रेषित किया जा सकता है। इन्हें क्रमशः ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, समतल संप्रेषण यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन तथा अधोमुखी संप्रेषण यानी कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। मूल्यांकन का कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रशासन का कार्य कितना प्रभावशाली है अथवा उनमें कहां सुधार की आवश्यकता है, इसका ज्ञान मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। यह मोहिल्लम के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर। मोहिल्लम ने शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को विस्तार पूर्वक श्रेणी में विभाजित किया है। उनके अनुसार शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य कार्य संपादन क्रिया एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी है। कार्य संपादन के संबंध में उनका मत है, कार्य संपादन क्रिया संक्षेप का में अर्थ है नीतियां तथा विधियों को प्रभाव युक्त बनाने के लिए समस्त प्रक्रियाओं को आवश्यक रूप में जुटाना, शैक्षिक योजना को क्रियान्वित करने में सहायक कोई भी माध्यम वास्तव में कार्य संपादन क्रिया का एक अंग ही होता है। The executive activity may be defined, verify as all the process required to make policies and procedure effective. Any agent or agency involved in actual carrying out of any part of the educational plans is functionally a part of the executive activity. वास्तव में शैक्षिक प्रशासन को अपनी सभी कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्यों के लिए निश्चित रूप में एग्जीक्यूटिव कार्य संपादन यानी कि कार्यों को पूरा करना की योजना बनानी होती है। संपादन क्रिया के अंतर्गत कुछ प्रमुख कर्तव्यों की मोहिल्लम ने चर्चा की है। कार्य संपादन की क्रियाएं, फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कार्य संपादन की मुख्य क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, परिनियमावली तथा नियोजन यानी कि लेजिस्लेशन और प्लानिंग। इस क्रिया का उद्देश्य योजना या नीतियों का निर्धारण करना है। नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों का भी चयन करना होता है जिनके कंधों पर इस उत्तरदायित्व को डाला जा सके। कार्य संपादन हेतु अर्थ धन को जुटाना भी व्यवस्था का कार्य है। दूसरा, संपादन करना यानी कि एग्जीक्यूटिव। इसका संबंध तकनीकी युक्त योजनाओं से होता है। निर्धारित को कार्यान्वित करना तथा सृजनात्मक नेतृत्व को प्रदान करना वास्तव में कार्यान्वयन क्रिया का अंग होता है। तीसरा, आकलन करना अप्रेजल। आकलन क्रिया का बड़ा महत्व है। परीक्षा के माध्यम से तथ्यों तथा परिस्थितियों का अध्ययन करके यह देखा जाता है कि सामान्य तथा विशिष्ट कार्यों के संपादन में कहां तक सफलता मिली है और यह भी ज्ञात किया जाता है कि कार्य का परिणाम निर्देशित तथा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है अथवा नहीं। चौथा, अर्थापन करना इंटरप्रिटेटिंग। कार्य के संपादन के माध्यम यानी कि विद्यालय अध्यापक आदि को समाज की आवश्यकताओं तथा साधनों से निरंतर परिचित कराने का उत्तरदायित्व व्याख्या क्रिया पर ही अवलंबित होता है। जनता के मूल्यों उद्देश्यों तथा परिस्थितियों से भी परिचित कराना इसका मुख्य कार्य होता है। मोहिल्लम के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कार्यों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, व्यावहारिक कार्य यानी कि ऑपरेशनल फंक्शन। दूसरा, अनुदेशनात्मक कार्य यानी कि इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। इन कार्यों के अंतर्गत कार्यों की सूची इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। पहला, व्यावहारिक कार्य ऑपरेशनल फंक्शन। व्यावहारिक कार्य की सूची निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। पहला, न्याय देना यानी कि लेजिस्लेशन। दूसरा, नीतियों तथा विधियों का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तीसरा, योजना तथा उनका संपादन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। चौथा, शिक्षा की अर्थव्यवस्था यानी कि एजुकेशनल फाइनेंस। पांचवा, व्यक्तियों के संबंधित प्रशासन यानी कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। छठवां, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण यानी कि सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। सातवां, शोध प्रशासन यानी कि रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन। आठवां, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी यानी कि सर्वे एंड स्टैटिक्स। नौवां, पाठ्य पुस्तक प्रकाश यानी कि टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन। दसवां, पाठ्य पुनर्गठन एवं प्रशासन यानी कि करिकुलर रिकंस्ट्रक्शन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ग्यारहवां, जनता विद्यालय कॉलेज एवं पुस्तकालय की सेवाएं यानी कि पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी सर्विसेज। बारहवां, शैक्षिक एवं व्यावसायिक सेवा यानी कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस सर्विसेज। तेरहवां, छात्रवृत्तियों तथा अन्य अनुदानों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप एंड अदर एड्स। चौदहवां, नियुक्ति तथा प्रशिक्षण यानी कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग। पंद्रहवां, अनुशासन एवं नियंत्रण डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। दूसरा, अनुदेशनात्मक कार्य इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। इसके अंतर्गत निर्देशनात्मक कार्य की सूची का निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, निर्देशनात्मक कार्यों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शंस। दूसरा, अध्यापकों की व्यावहारिक शिक्षा तथा प्रशासकों का प्रशिक्षण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ टीचर एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तीसरा, शिक्षक कल्याण तथा छात्र सेवा यानी कि टीचर वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज। चौथा, श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण तथा सेवाएं ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग एंड सर्विसेज। पांचवा, शिक्षा में मूल्यांकन तथा प्रमाण पत्र कार्यक्रम एजुकेशनल इवेल्युएशन एंड सर्टिफिकेशन। छठवां, सेवारत अध्यापकों तथा विस्तार शिक्षा की व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन सर्विस एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। सातवां, शिक्षा की विभिन्न शाखाओं का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एजुकेशन। आठवां, शिक्षा के विभिन्न स्तरों का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन। नौवां, शिक्षा के विभिन्न प्रकारों का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। शैक्षिक प्रशासन ही शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। शैक्षिक प्रशासन के अनेक कार्यों का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इन कार्यों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। वर्तमान युग में शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता जा रहा है, अतएव शिक्षा से संबंधित सभी अंगों का भी विस्तृत होना स्वाभाविक है। ऊपर उल्लेखित कार्यों में से कुछ प्रमुख कार्यों का चयन किया जा सकता है जिनका निर्वहन करने में शैक्षिक प्रशासन उत्तम कोटि का हो सकता है। शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य मेजर फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्यों के विस्तृत वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। पहला, शैक्षिक नीतियां एजुकेशनल लेजिस्लेशन। दूसरा, शैक्षिक योजना एजुकेशनल प्लानिंग। तीसरा, शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था यानी कि बजटिंग। चौथा, नीतियों तथा विधियों का निर्धारण यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। पांचवा कर्मचारी प्रबंध यानी कि पर्सनल, छठवां परीक्षा की व्यवस्था यानी कि कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, सातवां रिकॉर्ड की अनुरक्षण करना यानी कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, आठवां पर्यवेक्षण और निरीक्षण यानी कि सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, नवां संस्थाओं का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन तथा दसवां सहायक सेवाओं की व्यवस्था यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज। शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्यों का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा में न्याय प्रणाली एजुकेशनल लेजिस्लेशन। केंद्रीय तथा प्रांतीय शिक्षा मंत्रालय की नीतियों को शैक्षिक प्रशासन के माध्यम से ही कार्यान्वित किया जा सकता है। संसद एवं विधानसभाओं के लिए योग्य तथा कुशल व्यक्तियों को निर्वाचित करना अंतोगत्वा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था में ही सहायता करना समझा जाता है। दूसरा, नीतियों तथा विधियों का निर्धारण। फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। नीतियों का निर्धारण करने के लिए शैक्षिक मंत्रालय के साथ शिक्षा विभाग के सचिव तथा निदेशकों का रहना भी आवश्यक समझा जाता है। राज्यों की शिक्षा विषयक नीतियों का निर्धारण सामान्यतः शिक्षा सचिव ही करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था संपूर्ण राज्य में निरंतर गतिशील होती रहे, इसका उत्तरदायित्व शिक्षा सचिवों तथा निदेशकों पर ही होता है। सुविधा की दृष्टि से राज्य को मंडलों में बांट दिया जाता है, जिसका संपूर्ण प्रशासनिक कार्यभार शिक्षा उपनिदेशकों को सौंप दिया जाता है। वर्तमान भारत की विधान परिषदों में अध्यापकों तथा स्नातक क्षेत्र के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। वे मंत्रियों को सलाह देते हैं। इन नीतियों का संचालन शैक्षिक प्रशासन ही करता है। तीसरा, शिक्षा में नियोजन एजुकेशनल प्लानिंग। स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ राष्ट्रीय विकास के लिए ही किया गया। शिक्षा तो प्रजातंत्र की रीढ़ कही जाती है। इसमें संदेह नहीं कि किसी देश के राष्ट्रीय तथा शैक्षिक विकास में शैक्षिक योजना आधार का काम करती है। शैक्षिक संगठनों में लगे हुए सभी व्यक्तियों का योजना निर्माण में सहयोग होना चाहिए। शिक्षा की उत्तम व्यवस्था के लिए शैक्षिक प्रशासन को व्यापक एवं प्रगतिशील योजनाओं का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय, प्रांतीय अथवा जिला स्तरीय शैक्षिक योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रशासन का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। चौथा, शिक्षा में वित्तीय व्यवस्था एजुकेशनल फाइनेंसिंग। शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था में अनेक कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, यथा बजट बनाना, सरकारी तथा गैर सरकारी वित्तीय सहायता का हिसाब रखना, कर्मचारियों की आयकर का विवरण रखना, शिक्षा की विस्तार योजनाओं पर व्यय की गई धनराशि का बजट बनाना, शिक्षा स्तर की उन्नति हेतु कार्यक्रमों पर व्यय करना, सरकारी अनुदानों का हिसाब रखना, विद्यालयों की साज सज्जा एवं आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करना और उसकी हिसाब रखना, शैक्षिक शोध कार्यों पर व्यय करना आदि। इस प्रकार के वित्तीय कार्यों पर शैक्षिक प्रशासन नियंत्रण रखता है। वित्तीय मामलों में धनराशि को स्वीकृत करते हैं। विद्यालयों के अंदर प्रधानाचार्य वित्तीय व्यवस्था के लिए उत्तरदायी समझे जाते हैं। आजकल प्रत्येक जनपद में वित्तीय अधिकारी भी नियुक्त किए जाते हैं। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अधिकारी नियुक्त होते हैं। राज्यों में शिक्षा निदेशकों के अतिरिक्त वित्तीय निदेशक भी होते हैं। इन सभी अधिकारियों का कर्तव्य शिक्षा क्षेत्र के सभी वित्तीय कार्यों में सहायता करना है। शिक्षण संस्थाओं का कार्य वित्तीय सहायता के अभाव में रुके नहीं तथा स्वीकृत धनराशि का अपव्यय नहीं किया जाए। वास्तव में इस बात पर पूर्ण ध्यान देना शैक्षिक प्रशासन का ही प्रमुख कार्य होता है। पांचवा, कर्मचारी प्रबंधन पर्सनल मैनेजमेंट। किसी भी संगठन या संस्था को चलाने के लिए केवल एक नहीं अपितु अनेक कर्मचारियों की कार्य दक्षता की आवश्यकता होती है। संगठन में लगे हुए व्यक्तियों के अनेक कार्यों का संपादन करना शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कर्तव्य है। यथा कर्मचारियों की नियुक्ति, योग्यता स्तर का ज्ञान, उत्तम कर्मचारियों को पुरस्कृत एवं प्रेरित करने की विधियों, सेवारत कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सेवा नियमों का निर्धारण, प्रोन्नति, पेंशन, स्थानीय नियंत्रण, गोपनीय आलेख, विद्यालय संबंधी कार्यों में असाधारण सहयोग आदि अनेक कार्यों की शैक्षिक प्रशासन ही करता है। छठवां, परीक्षाओं की व्यवस्था कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कर्तव्य परीक्षाओं की व्यवस्था करना और प्रमाण पत्रों तथा उपाधि पत्रों की व्यवस्था करना है। उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद वर्तमान समय में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा की व्यवस्था करती है। इससे इसमें इंटर और हाई स्कूल परीक्षा के संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के परीक्षार्थी शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद विश्व में सबसे बड़ी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में विभागीय परीक्षाएं भी होती हैं, जिनका संचालन व व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन करता है। परीक्षाओं की व्यवस्था प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयी स्तर पर की जाती है, जिसके लिए शैक्षिक प्रशासन ही उत्तरदायी होता है। सातवां, आलेखों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। विद्यालयों, शिक्षा विद्यालयों, निरीक्षकों और उपनिदेशकों के कार्यालयों में शिक्षकों और विद्यालयों से संबंधित अनेक तथ्यों को सुरक्षित रखा जाता है, तथा सुरक्षा के कार्य को ही मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। यह रिकॉर्ड विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला व्यक्तिगत रिकॉर्ड यानी कि व्यक्तिगत फाइल, सेवा रजिस्टर, पुरस्कार, प्रमाण पत्र और साज सज्जा संबंधी तथ्यों की सुरक्षा। दूसरा, अनुदान से संबंधित तथ्यों की सुरक्षा, जिसमें भवन के लिए अनुदान, आवर्तक अनुदान, पुस्तकालय अनुदान आदि का रिकॉर्ड। तीसरा, वित्तीय रिकॉर्ड, इसमें बजट का अनुदान। चौथा, पर्यवेक्षण व निरीक्षण रिकॉर्ड, इसमें। पांचवा, परीक्षा रिकॉर्ड, बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र, विवरण, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आदि की सुरक्षा। आठवां, पर्यवेक्षण और निरीक्षण, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, शिक्षा संस्थाओं को सरकारी वित्तीय सहायता देने के लिए ही इस बात को देखने की भी आवश्यकता का अनुभव हुआ है कि उन्हें धन दिया जा रहा है, इन संस्थाओं में शैक्षिक स्तर उचित रूप से अपनाया जा रहा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य महत्वपूर्ण समझा जाने लगा है, परंतु वर्तमान युग में संस्थाओं का निरीक्षण करना ही पर्याप्त नहीं समझा जाता है। शैक्षिक निर्देशन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। पर्यवेक्षण की व्यवस्था करना भी शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है। नवा, संस्थाओं का प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। संपूर्ण राज्य में शिक्षा प्रशासन की संख्या बहुत अधिक है। सरकारी, गैर सरकारी, केंद्रीय विद्यालय, मिशनरी स्कूल आदि अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं में अभी तक शिक्षण की एकरूपता नहीं है। कहीं पर 10+2, कहीं पर हायर सेकेंडरी और कहीं पर हाई स्कूल तथा इंटर कक्षाओं की प्रणाली अपनाई जाती है। इन विविधताओं के होते हुए भी शिक्षण संस्थाओं की उचित व्यवस्था करना शैक्षिक प्रशासन का ही कार्य है। दसवां, सहायक सेवाओं की व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज। सहायक सेवाएं संस्थाओं के शैक्षिक कार्यों में सहयोग करती हैं। पुस्तकालय सेवा, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन, मध्याह्न भोजन, पिछड़े बालकों को छात्रवृत्तियां, विशिष्ट योग्यता के लिए पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, मुफ्त पुस्तक वितरण आदि अनेक प्रकार की सहायक सेवाओं की व्यवस्था शैक्षिक प्रशासन ही करता है। शिक्षा प्रशासन के मूल कार्य, इसको एक तालिका के द्वारा दिखाया गया है और इस तालिका को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग विशेषज्ञ का है और दूसरा भाग कार्य का। इसमें विशेषज्ञ के अंतर्गत पहला सीयर्स के अनुसार, कार्य के अंतर्गत पहला नियोजन, दूसरा व्यवस्था, तीसरा संचालन, चौथा समायोजन, पांचवा मूल्यांकन यानी कि नियंत्रण। विशेषज्ञ में दूसरा पॉइंट है लूथर गुलिक के अनुसार, और लूथर गुलिक के कार्य हैं नियोजन, दूसरा व्यवस्था, तीसरा नियुक्ति, चौथा निर्देशन, पांचवा समन्वय, छठवां विज्ञप्ति लेखन, सातवां बजट। विशेषज्ञ में तीसरा पॉइंट हेनरी फेल के अनुसार, इनके कार्य हैं पहला नियोजन, दूसरा व्यवस्था, तीसरा निर्देशन, चौथा समन्वय, पांचवा नियंत्रण यानी कि मूल्यांकन। विशेषज्ञ में चौथा पॉइंट है रसेल टी ग्रेग के अनुसार, इनके कार्य हैं पहला निर्णय लेना, दूसरा योजना बनाना, तीसरा व्यवस्था करना, चौथा संप्रेषण करना, पांचवा प्रभाव डालना, छठवां समन्वय करना, सातवां मूल्यांकन करना। विशेषज्ञ में पांचवा पॉइंट है मोहिल्लम के अनुसार, इसमें पहला है कार्य क्रियाशील कार्य, दूसरा निर्देशनात्मक कार्य। विशेषज्ञ में छठवां पॉइंट है प्रमुख कार्य उपरोक्त समीक्षा से, इनके कार्य पहला शैक्षिक व्यवस्था, दूसरा नीति निर्धारण, तीसरा योजना, चौथा वित्तीय व्यवस्था, पांचवा कर्मचारी प्रबंधन, छठवां संस्थाओं का प्रशासन, सातवां पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, आठवां परीक्षा व्यवस्था, नौवां सहायक सेवा, दसवां रिकॉर्ड सुरक्षा। शिक्षा प्रशासन के मूल कार्य, बेसिक फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। उपरोक्त विद्वानों के विचारों का विश्लेषण करने से मूल कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है, जबकि सभी ने अपने अपने ढंग से कार्यों का उल्लेख किया है। शिक्षा प्रशासन के मूल कार्य निम्नलिखित हैं, पहला नियोजन करना यानी कि प्लानिंग, दूसरा व्यवस्था अथवा संगठन करना यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण करना यानी कि सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, चौथा मूल्यांकन या नियंत्रण करना यानी कि इवेल्युएटिंग और कंट्रोलिंग, पांचवां निर्णय लेना यानी कि डिसीजन मेकिंग, छठवां संप्रेषण करना यानी कि कम्युनिकेशन, सातवां वित्तीय व्यवस्था करना यानी कि बजटिंग, आठवां समन्वय करना यानी कि कोऑर्डिनेशन, नौवां निर्देशन तथा नेतृत्व करना यानी कि गाइडिंग एंड लीडरशिप, दसवां नियुक्तियां करना यानी कि अपॉइंटमेंट, ग्यारहवां नीति निर्धारण करना यानी कि पॉलिसी मेकिंग और बारहवां सहायक सेवाएं एवं आलेखों का अनुरक्षण यानी कि हेल्पिंग सर्विसेज एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। मूल कार्यों का क्षेत्र इतना व्यापक है कि प्राचार्य को करना कठिन होता है, इसलिए प्राचार्य के लिए यह उचित होता है कि वह अपने उत्तरदायित्वों, कार्यों तथा अधिकारों को अपने वरिष्ठ शिक्षकों को सौंप देता है, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता भी देता है कि कार्य क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में निर्णय भी ले सकता है, यदि आवश्यकता समझे तो प्राचार्य से विचार विमर्श कर सकता है, परंतु औपचारिक दृष्टि से जवाबदेही प्राचार्य की होती है, इसलिए अधिकारों को सौंपते समय शिक्षक की निष्ठा और लगन को भी ध्यान में रखना चाहिए। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज, इसमें पहला शिक्षा प्रशासन का अर्थ बताइए और शिक्षा प्रशासन के मूल कार्यों को बताइए, उनका संक्षिप्त विवरण भी दीजिए। दूसरा कार्य संपादन की मुख्य क्रियाओं को बताइए और व्यावहारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तीसरा कार्य संपादन की क्रियाओं की प्रकार बताइए, अनुदेशनात्मक कार्यों की सूची दीजिए। चौथा शिक्षा प्रशासन के प्रमुख कार्य बताइए, वित्तीय व्यवस्था एवं नीति निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पांचवा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण में अंतर बताइए, पर्यवेक्षण कार्यों की आवश्यकता तथा महत्व बताइए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला शिक्षा प्रशासन की परिभाषा दीजिए, दूसरा शिक्षा प्रशासन के मूल कार्यों को बताइए, तीसरा कार्य संपादन की मुख्य क्रियाओं को बताइए, चौथा अनुदेशनात्मक कार्यों को बताइए, पांचवा व्यावहारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। सत्य असत्य प्रश्न ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, पहला सीयर्स ने प्रशासन के मूल कार्यों को दिया सत्य या असत्य, दूसरा सीयर्स ने प्रशासन के पांच मूल कार्य दिए सत्य या असत्य, तीसरा कार्य संपादन के कार्य दो प्रकार के होते हैं सत्य या असत्य, चौथा अनुदेशनात्मक तथा शैक्षिक अधिक होते हैं सत्य या अधिक, पांचवा व्यावहारिक कार्य प्रशासनिक होते हैं सत्य या असत्य। कुंजी, पहले के लिए सत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य, पांचवें के लिए सत्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें पहला लूथर गुलिक ने प्रशासन के रिक्त स्थान कार्यों को दिया है, दूसरा सीयर्स ने प्रशासन के रिक्त स्थान कार्यों को दिया है, तीसरा कार्य संपादन को रिक्त स्थान भागों में विभाजित किया है, चौथा शैक्षिक कार्य रिक्त स्थान होते हैं, पांचवा प्रशासनिक कार्य रिक्त स्थान होते हैं। कुंजी, पहले के लिए सात, दूसरे के लिए पांच, तीसरे के लिए दो, चौथे के लिए अनुदेशनात्मक, पांचवें के लिए व्यवहारिक। बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन, पहला सीयर्स ने प्रशासन के कार्य बताए हैं अ सात, ब पांच, स आठ, द दस, दूसरा कार्य संपादन की प्रकार हैं अ अनुदेशनात्मक, ब व्यवहारिक, स दोनों ही, द उपरोक्त कोई नहीं, तीसरा व्यवहारिक संपादन के कार्य हैं अ न्याय तथा नीति निर्धारण, ब पर्यवेक्षण व निरीक्षण, स अनुशासन व नियंत्रण, द उपरोक्त सभी, चौथा अनुदेशनात्मक संपादन के कार्य हैं अ वृत्तिक विकास, ब मूल्यांकन परीक्षण, स पाठ्य सहगामी क्रियाएं, द उपरोक्त सभी, पांचवा परिवीक्षण का संपादन कार्य है अ अनुदेशनात्मक, ब व्यवहारिक, स उपरोक्त दोनों ही, द उपरोक्त कोई नहीं। कुंजी, पहले के लिए ब, दूसरे के लिए स, तीसरे के लिए द, चौथे के लिए द, पांचवें के लिए ब।